आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये क्लास 10th के साइंस का 10th चैप्टर है और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम रिवाइज कर लेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। सो लास्ट क्लास के अंदर सबसे पहले तो हम लोगों ने पेज नंबर 166 पर जो रे डायग्राम्स हैं और इन रे डायग्राम्स में हमें बताया गया है कि किस तरीके से एक कॉनकेव मिरर में इमेज की फॉर्मेशन होती है अलग अलग पोजीशंस पर, जब ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पर रखा जाता है इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर आप लोगों को रे डायग्राम्स दिखाई गई हैं जिनको मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था फिगर 10.7 में। आपको जो रे डायग्राम्स दिखाई हैं, मैंने आपको ये भी बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आनी चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में आपको ड्रॉ करने के लिए कहा जा सकता है, तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी अबाउट द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के बहुत सारे यूजेस होते हैं जिनके बारे में हमने बात की थी। कॉनकेव मिरर को टॉर्च रेज में यूज करते हैं, टॉर्च बनाने के लिए यूज करते हैं, सर्च लाइट्स में यूज करते हैं, व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स होती है उसको बनाने के लिए भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है क्योंकि कॉनकेव मिरर से एक पावरफुल पैरेलल बीम मिलती है, कंसंट्रेटेड लाइट की बीम मिलती है, तो इसीलिए कॉनकेव मिरर्स को यूज करते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि क्योंकि कॉनकेव मिरर एक इनलार्ज्ड इमेज दिखा सकता है ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, तो कॉनकेव मिरर्स को डेंटिस्ट यूज करते हैं दांत की दिक्कतें हैं उसको बड़ा करके, दांत की जो इमेज है बड़ा इमेज देखने के लिए भी कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है। साथ ही में इसको शेविंग मिरर के तौर पे भी यूज करते हैं क्योंकि इसके जो कॉनकेव मिरर है इससे इमेज एनलार्ज्ड मिलती है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन होती है ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो कॉन्वेक्स मिरर आप लोगों को पता है बल्ज्ड आउटवर्ड्स होती है, आगे की तरफ से उभरी हुई होती है। हमने देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर जो है अगर उसके सामने हम कोई ऑब्जेक्ट लाते हैं तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे पीछे करके उसकी पोजीशन को वेरिएशन दे करके हमने देखा था कि इमेज में क्या क्या वेरिएशन आती है जब कॉन्वेक्स मिरर से इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो आपने ये देखा था कि हालांकि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाता है वो हमेशा छोटे साइज की बनाता है और वर्चुअल बनाता है। वर्चुअल का मतलब है कि जो इमेज है उसे आप स्क्रीन पर नहीं ला सकते हैं, वो आपको सिर्फ मिरर के इनसाइड ही दिखेगी, मिरर में देखना होगा अगर आपको इमेज देखना है। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड बनाता है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने ऑब्जेक्ट को मिरर के करीब लाएंगे तो इमेज थोड़ी सी साइज की बढ़ जाएगी लेकिन फिर भी वो डिमिनिश्ड ही होती है। डिमिनिश्ड हम तब कहते हैं जब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज की साइज बहुत छोटी है, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे अगर कंपेयर करें इमेज की साइज को तो इमेज की साइज जो होती है बहुत छोटी होती है, तब हम इमेज को डिमिनिश्ड कहते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी साइज की ही इमेज बनाता है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के पास लाएंगे तो पहले की तुलना में, तब की तुलना में जब आप ऑब्जेक्ट को दूर रख रहे थे और तब जो इमेज बन रही थी उसके कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट को पास में लाने से इमेज की साइज थोड़ी सी बढ़ जाती है। यहाँ पर आपको पता भी है कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा दूर रखा है यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है तो उसकी जो इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर से पास होने के बाद वो इमेज हमेशा फोकस पर बनती है, बिहाइंड द मिरर बनेगी क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में फोकस जो होता है, फोकस पॉइंट जो होता है कॉन्वेक्स मिरर का, वो बिहाइंड द मिरर होता है। तो फोकस पॉइंट पर इमेज की फॉर्मेशन होगी और वो हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज की है। तो आप देख सकते हैं कि जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा होगा उतना ही छोटे साइज का इमेज का फॉर्मेशन होगा, और अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं पर भी आप रखते हैं तो उसकी जो इमेज बनती है वो पोल और फोकस के बीच में बनती है बिहाइंड द मिरर कॉन्वेक्स मिरर के केस में। और ये आप लोगों को यहाँ पर फिगर 10.8 ऑन पेज नंबर 167 रे डायग्राम से शो किया है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसे लर्न कर लेंगे। और जो टेबुलर फॉर्म में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है टेबल 10.2 पेज नंबर 167 पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको लर्न कर लेना है कि किस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हम लोगों ने यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर जो है इसको यूज करते हैं एज रियर व्यू मिरर्स, व्हीकल्स के अंदर रियर व्यू मिरर के तौर पर इसको यूज करते हैं। रियर व्यू मिरर यानी कि ऐसा मिरर जो पीछे का सारा कुछ जो चल रहा है वो दिखा सके। तो व्हीकल्स जो होते हैं उनके साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में मिरर्स लगे होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स लगे होते हैं, और ये कॉन्वेक्स मिरर्स क्या करते हैं, जो व्हीकल्स के पीछे जो भी गतिविधि चल रही है उसकी इमेज ये शो करते हैं। तो अगर पीछे से एक्सीडेंट वगैरह होने वाला हो, कोई कार आ रही हो, कोई भी व्हीकल पीछे से हिट करने वाली हो, तो ड्राइवर उसे बहुत इजीली देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपना मूवमेंट कर सकते हैं। तो रियर व्यू मिरर के तौर पर कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, क्योंकि इसके फायदे बहुत है। जो इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर से वो इरेक्ट होती है, सीधी होती है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कार जो है वो किस डायरेक्शन में आ रही है पीछे से। बाकी जो कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि ये बल्ज्ड आउटवर्ड्स है, बाहर की तरफ से उभरा है, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा होता है, मतलब कि ज्यादा एरिया के ऑब्जेक्ट्स की इमेज फॉर्मेशन करके देता है। तो इसी वजह से कॉन्वेक्स मिरर को हम रियर व्यू मिरर के तौर पे यूज करते हैं। इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इसका मतलब है कि आप लोग जब कोई भी स्फेरिकल मिरर लेते हैं, उससे इमेज की फॉर्मेशन कराते हैं, उसको कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है तो आप वहां से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करते हैं, इमेज कहाँ फॉर्मेशन हुई है तो वहां पर आप इमेज डिस्टेंस मेजर करते हैं, उसके बाद आपको फोकस लेंथ भी मेजर करनी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मेजर करनी होती है, हाइट कहाँ बनी है, अबव द एक्सिस बनी है या बिलो द एक्सिस बनी है, ये सब चीजें आपको मेजर करनी होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली साइंस जो होते हैं वो भी कंसिडर करने होते हैं। जब आप लोग डिस्टेंसेज मेजर कर रहे होते हैं या फिर लेंथ मेजर कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप लोगों को कुछ साइन कन्वेंशन भी फॉलो करने होते हैं, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जब स्फेरिकल मिरर से कोई भी इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखा होता है, तो उस हिसाब से हम लोगों को वेरियस लेंथ मेजर करने होते हैं। तो उसको मेजर करते वक्त हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, जिसे आप लोग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन या फिर जो साइन कन्वेंशन की रूल्स हैं वो कह सकते हैं। तो इसको आपको कैसे मेजर करना होता है, इसे आप बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइन कन्वेंशन नहीं फॉलो करेंगे और गलत कर देंगे, साइन कन्वेंशन गलत फॉलो करेंगे, तो आपका आंसर कभी भी करेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि आपको इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। सिर्फ थ्योरी वाला चैप्टर नहीं है कि आपको कुछ थ्योरी याद कर ली और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपको इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप लोग साइन कन्वेंशन ठीक से फॉलो करेंगे, और साइन कन्वेंशन अगर ठीक से फॉलो करना है तो अभी जो बात बताई जा रही है उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना है। तो आपकी जो मिरर है, हमेशा उस मिरर को हाफ इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने वाला एक पॉइंट है जो मिरर के ऊपर लाई करता है, विच इज कॉल्ड एज पोल। पोल कहते हैं, कैपिटल पी से उसे डिनोट करते हैं, जो कि मिरर के ऊपर लाई करता है। उसके बाद आपको पता है कि पोल को कट करती हुई एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करते हैं, वो जो स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करते हैं उस लाइन के ऊपर पोल पॉइंट होता है, फोकस पॉइंट होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट होता है। तो उस लाइन पर सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो लाई करते हैं, उसके ऊपर मौजूद होते हैं। तो ऐसी एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन आपकी रेफरेंस लाइन है, और इस रेफरेंस लाइन को आप प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर भी कह सकते हैं। ये बेसिकली आप लोगों को पता है, जब आप लोग एक्स वाई एक्सिस बनाते हैं तो उसमें जो एक्स एक्सिस का काम कर रहा होता है, इसी तरीके से यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस भी बना हुआ है, जो कि हम लोगों ने बनाया है एक ऐसा लाइन, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन विच कैरीज द पोल पॉइंट, फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट। अब देखो क्या होता है कि जब भी कभी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, अबव प्रिंसिपल एक्सिस कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसकी जब हाइट मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव मानी जाएगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है जो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उसकी हाइट जब आप मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव मानी जाएगी। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, तो अबव एक्स एक्सिस जो होता है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, और बिलो एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, तो नेगेटिव होता है वो। तो इसी वजह से प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितनी भी, जो मान लो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, अगर वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है तो वो आप नेगेटिव लेंगे, अगर वो ऑब्जेक्ट कोई रखा है जो अबव प्रिंसिपल एक्सिस रखा है तो वो आप पॉजिटिव लेंगे। जैसे मान लो कि कोई ऐसी ऑब्जेक्ट रखी है जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर और वो अबव प्रिंसिपल एक्सिस रखा है, तो आप उसकी हाइट कैसे लिखेंगे, +5 सेंटीमीटर ऐसे लिखेंगे। और मान लो कि कोई इमेज बन रही है जिसकी जो हाइट है उस इमेज की वो है 6 सेंटीमीटर और वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आप कैसे लिखेंगे उसकी हाइट, आप लिखेंगे -6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लोगों को हाइट मेजर करनी है अबव प्रिंसिपल एक्सिस एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। अबव प्रिंसिपल एक्सिस जो भी लेंथ आप मेजर करते हैं, हाइट वगैरह, वो पॉजिटिव होती है, और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस जो भी हाइट्स आप मेजर करते हैं वो नेगेटिव होती है। अब दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको तो बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको। आपका जो मिरर है, मान लो कि आपका कॉनकेव मिरर है और आपने ऑब्जेक्ट रखा है टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, तो इस केस में आपने क्या किया, आपने ऑब्जेक्ट को रखा है टू द लेफ्ट ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के लेफ्ट में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उससे जो रेज आ रही होंगी वो किस डायरेक्शन में आ रही होंगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है टू द लेफ्ट ऑफ द कॉनकेव मिरर यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में रखा हुआ है, तो उससे रेज आ रही होंगी कॉनकेव मिरर पर, तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ की होगी, उसकी डायरेक्शन राइट साइड की होगी। तो रेज की डायरेक्शन जो है वो किधर की है, टूवर्ड्स राइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है तो जाहिर सी बात है कि कॉनकेव मिरर जो है वो राइट साइड में है, तो राइट साइड को फेस करती हुई रेज ओरिजिनेट होंगी फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट और वो रेज जो है वो कॉनकेव मिरर पर पड़ रही होंगी। तो यहाँ पर रेज की डायरेक्शन क्या है, रेज की डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इस तरीके की रेज है। तो अगर कभी जो रेज है वो ऐसी है जो ट्रेवल कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ऐसी रेज को आप क्या कहेंगे कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली रेज है, इंसिडेंट रेज है। तो जब भी कभी इंसिडेंट रेज ऐसी हो जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, जब भी कभी रेज ऐसी हो जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, तो आप यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो आप कैसे मेजर करते हैं, कोई भी डिस्टेंस जब मेजर किया जाता है वो पोल से मेजर किया जाता है, तो पोल से ऑब्जेक्ट जहां पर रखा है वहां का आप डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो है वो रखा है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉनकेव मिरर और इससे जो इंसिडेंट रेज है उनकी डायरेक्शन क्या है, उनकी डायरेक्शन प्लस एक्स एक्सिस में है। अब आप मेजर करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द ऑब्जेक्ट, तो इसमें आप मूव कहां से कर रहे हैं, आप पोल से ऑब्जेक्ट की ओर मूव कर रहे हैं, यानी कि आप नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा है, कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में रखा है। तो इसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं यानी कि आप नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जब आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो ऐसे में आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लिखनी होती है। समझ गए आप लोग, यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है, आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इंसिडेंट रेज हैं कॉन्वेक्स मिरर पर या कॉनकेव मिरर पर, जो इंसिडेंट रेज है उनकी डायरेक्शन क्या है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना होता है। तो उसके लिए आपको देखना होगा कि ऑब्जेक्ट किस साइड में रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर के लेफ्ट साइड में रखा है कि राइट साइड में रखा है, ये चेक कर लेंगे। तो आप ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट से लाइट पड़ती है मिरर की ओर, तो आपको ये चेक करने के लिए कि इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, लेफ्ट साइड में रखा है या राइट साइड में रखा है। अगर वो लेफ्ट साइड में रखा है तो उससे जो इंसिडेंट रेज पड़ेंगी मिरर के ऊपर वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होंगी। तो अगर इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जब मेजर करेंगे तो वो हमेशा आप पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करते हुए डिस्टेंस मेजर करेंगे। ना सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, यहाँ पर इमेज की भी जब आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो आप पोल से ही मूव करेंगे, पोल से इमेज की तरफ मूव करते हुए आप डिस्टेंस मेजर करेंगे। कभी भी डिस्टेंस जब मेजर करते हैं तो वो पोल से मेजर करते हैं, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ या फिर पोल से इमेज की तरफ, तो हमेशा पोल से आपको मूव करना होता है। तो आप ये देखेंगे कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ रहा है। अगर आपकी इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं डिस्टेंस मेजर करते वक्त, तो आप डिस्टेंस जो मेजर आपने किया है उसको नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर आप लोगों को जो साइन कन्वेंशन बताया गया है ऑन पेज नंबर 168, यहाँ पर आपको पहले से ही अज्यूम करके दिया गया है कि हमेशा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रखा है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखा हो, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट दूसरी साइड पर भी रखा हो, अगर कॉन्वेक्स मिरर है उसके ऑपोजिट साइड में भी रखा हुआ हो सकता है, वो मिरर के ऑपोजिट अलग जगह पर भी रखा हुआ हो सकता है ऑब्जेक्ट, हो सकता है कि उसे राइट हैंड साइड पर रखा हुआ हो या फिर लेफ्ट हैंड साइड पर रखा हुआ हो, तो आपको अकॉर्डिंगली देखना होता है। यहाँ पर आपको पहले से ही बताया गया है कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखा जा रहा है, उस केस में कैसे होता है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस केस में आप अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसे आप नेगेटिव लेंगे क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है, और अगर इमेज उसकी फॉर्मेशन हो रही है लेफ्ट हैंड साइड पर ही, तो आप इमेज डिस्टेंस को भी नेगेटिव लेंगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पर और उसकी इमेज बन रही है राइट हैंड साइड पर, तो आप राइट हैंड साइड में जो इमेज बन रही है उसकी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे। यानी कि इसमें आपको पहले से ही अज्यूम करके दिया गया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर रखा है। लेकिन परिस्थिति चेंज भी हो सकती है। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे, 11th-12th में जाएंगे, तो आपको बताया जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हुआ हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपको रेज बनानी होती है और आपको जो डिस्टेंस है उसको मेजर करना होता है, साइन आपको देना पड़ता है। तो हो सकता है कि आप लोगों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस अभी ना पूछे जाएं, आपके लेवल पे ना पूछे जाएं, 10th में ना पूछे जाएं, लेकिन अगर कभी पूछे जाएं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आपको जो बताया है मैंने अभी उनको आपको ध्यान में रखना है। आपको ये चेक करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में रखा है या राइट हैंड साइड में रखा है। अगर वो राइट हैंड साइड में रखा है तो उससे जो रेज पड़ेंगी वो कहाँ से पड़ेंगी, हमेशा रेज जो होती है वो ऑब्जेक्ट से मिरर की ओर पड़ती है। तो सपोज कर लो कि कॉनकेव मिरर रखा है और उसके राइट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस बार जो रेज की डायरेक्शन होगी, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन, वो किधर होगी, वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी। तो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है और ये रेज जो है ये ऑब्जेक्ट से कॉनकेव मिरर पर पड़ रही है, यानी कि कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ फेस कर रहा है। तो कॉनकेव मिरर जो है वो ऑब्जेक्ट की ओर फेस कर रहा है और ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करती हुई कॉनकेव मिरर पर पड़ रही है। तो इस बार जब आप जो डिस्टेंस है वो मेजर करेंगे तो आपको कहाँ से कहाँ मूव करना पड़ेगा, आपको पोल से ऑब्जेक्ट की ओर मूव करना पड़ेगा, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आपको मूव करना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बोला है कि जब भी कभी इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इमेज की जो या फिर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है अगर वो ऑपोजिट दिशा में है दोनों, तो ऐसे में आपको नेगेटिव लेनी होती है डिस्टेंस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो राइट हैंड साइड में रखा हुआ है और मतलब कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर के राइट हैंड साइड में रखा हुआ है और कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है। तो जो रेज होंगी वो ऑब्जेक्ट से कॉनकेव मिरर पर पड़ेंगी और ट्रैवल करेंगी इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो इस केस में आपको अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको मेजर करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमेशा आपको डिस्टेंस पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ या फिर पोल से इमेज की तरफ मेजर करनी होती है। तो यहाँ पर आप पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जब मूव करेंगे तो आपको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो रेज की डायरेक्शन तो है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, दोनों ऑपोजिट है आपस में। तो इसीलिए जब आप अपने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लिखेंगे तो वो आप नेगेटिव लिखेंगे। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो आपको पेज नंबर 168 पर बताया गया है कि आपको हमेशा जो ऑब्जेक्ट या फिर इमेज जो भी चीजें हैं अगर वो राइट हैंड साइड पर हैं तो आप उसे पॉजिटिव ले लें और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पर हैं तो आप उसे नेगेटिव ले लें, ये वाली बात यहाँ पर फिट नहीं बैठ रही है क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट अलग कर दिया। आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है उसको रखा है ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर, लेकिन बुक में आपको पेज नंबर 168 पर जो रूल्स बताए गए हैं उसमें आपने पहले से ही अज्यूम किया हुआ है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर रखा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑब्जेक्ट जो है वो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर रखा हो सकता है उसे राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर भी रखा हो। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर जो साइंस है उसको खुद से देखना है, आप स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है उसे फॉलो करिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि मिरर जो है वो कहाँ रखा है, उसके बाद ये देखिए कि मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में रखा है कि राइट हैंड साइड में रखा है। उसके बाद आप क्या करिए, आप ये भी देखिए कि मिरर क्या ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है। आपका मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट को फेस करता हुआ होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का वो हमेशा ऑब्जेक्ट को फेस करता हुआ होगा। तो ऑब्जेक्ट से जो रेज है, इंसिडेंट रेज है, वो आपके मिरर पर पड़ेंगी। मिरर पर जब रेज पड़ेंगी, इंसिडेंट रेज फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट, तो आप ये देखिए कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। जब आप ये देख लेंगे कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, उसके बाद आप दूसरा काम ये करेंगे कि आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे या फिर इमेज डिस्टेंस मेजर करेंगे और उसके लिए आपको पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाना होगा। तो उसमें आप देखिए कि आप पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं जब, तो क्या वो विपरीत दिशा में है इंसिडेंट रे से। अगर आप देखें कि इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रही है क्या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको जाना पड़ रहा है वाइल मेजरिंग दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर इमेज डिस्टेंस। अगर आपको विपरीत दिशा में जाना पड़ रहा है तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, जो डिस्टेंस आप मेजर करेंगे उसको साइन आपको नेगेटिव देना पड़ेगा। अगर आप सेम दिशा में जा रहे हैं वाइल मेजरिंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर इमेज डिस्टेंस, तो आप वहां पर पॉजिटिव साइन देंगे अपने इमेज डिस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। तो इस तरीके से आपको मेजर करना होता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, आप लोगों को मिरर फॉर्मूला बताया गया है। ये मिरर फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पर 1/v में जो v है ये है इमेज डिस्टेंस, प्लस 1/u, u जो है ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इज इक्वल्स टू 1/f, जो f है ये फोकल लेंथ है। जो फोकल लेंथ होती है वो कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा आपको नेगेटिव लेनी होती है, यानी कि आपको जो भी वैल्यू दी गई होगी फोकल लेंथ की, आप उसको नेगेटिव साइन दे करके ही इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। उसके बाद अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर दिया है, उसका कोई फोकल लेंथ की वैल्यू दी है, तो आपको जब फॉर्मूले में पुट करना होगा तो आप पॉजिटिव साइन दे करके फोकल लेंथ को पुट करेंगे। तो आपको ध्यान हमेशा रखना है, ये हमेशा आपको याद रखना है कि फोकल लेंथ आप कॉनकेव मिरर का अगर कोई वैल्यू आपको दी है तो आप उसका नेगेटिव करके ही फॉर्मूले में पुट करेंगे, और आपको कॉन्वेक्स मिरर का कोई फोकल लेंथ दिया है तो उसका पॉजिटिव वैल्यू आप लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर बेस्ड आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो ये फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिए, जो कि पेज नंबर 169 पर है। फॉर्मूला नंबर 10.1 मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन करके लिखा हुआ है, उसमें 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसे ये याद कर लीजिएगा बिल्कुल, इसमें से आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद जो फोकल लेंथ के बारे में आपको बताया, ये बात भी आप याद रखेंगे कि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ की नेगेटिव वैल्यू डाल के ही आप इस फोकल वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। उसके बाद अगर कॉन्वेक्स मिरर दिया है तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव वैल्यू आपको फॉर्मूले में पुट करनी है। उसके बाद यहाँ पर देखो फिगर 10.9 जो कि पेज नंबर 169 पर ही है, इसमें आप लोगों को एक कॉनकेव मिरर दिया गया है रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, और उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखी है, वो रखी है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। उसके बाद इससे जो इंसिडेंट लाइट पड़ रही है उसकी डायरेक्शन देखो, कहाँ जा रही है डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट की, इसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं डायरेक्शन जो है इंसिडेंट लाइट की वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। इसीलिए जब आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करते हैं तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करते वक्त आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये दोनों जो डायरेक्शन है ये ऑपोजिट है आपस में, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने की डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट है। इसीलिए आप लोग जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखेंगे तो उसकी नेगेटिव वैल्यू लिख करके आप फॉर्मूले में पुट करेंगे। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि पहले से अज्यूम किया गया है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखा गया है मिरर के, तो ऐसे केस में कि अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पर रखा हो गया हो मिरर के, तो आप जब भी डिस्टेंसेज मेजर करते हैं और वो डिस्टेंसेज अगर लेफ्ट हैंड साइड पर है तो वो सारी आप कैसे मेजर करेंगे, नेगेटिव मेजर करेंगे, और जो भी डिस्टेंसेज है अगर वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो वो सारी आप पॉजिटिव मेजर करेंगे। तो ये तो पहले से ही अज्यूम किया गया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखा है, लेकिन ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखा जा सकता है, और उस केस में आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। आपको सबसे पहले चेक करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, लेफ्ट में रखा है कि राइट में रखा है। अगर राइट में रखा है तो उसके बाद उससे इंसिडेंट रेज पड़वाइए अपने कॉनकेव मिरर पर या कॉन्वेक्स मिरर पर। तो उस केस में मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो राइट हैंड साइड में रखा है तो कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ फेस कर रहा होगा और इंसिडेंट लाइट की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी। उसके बाद आप क्या करेंगे नेक्स्ट, आप अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो उसके लिए आपको पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाना पड़ेगा, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा अगर ऑब्जेक्ट आपका राइट हैंड साइड में रखा है तो। तो यहाँ पर दोनों डायरेक्शंस ऑपोजिट है, इंसिडेंट रेज की जो डायरेक्शन है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने की जो डायरेक्शन है वो आपस में विपरीत है। तो इसीलिए जब आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे और फॉर्मूले में पुट करेंगे तो उसके पहले आप वैल्यू को नेगेटिव साइन दे करके ही फॉर्मूले में पुट करेंगे। सिमिलरली आपको ये भी देखना होता है कि इमेज कहाँ पर बनी है, इमेज जो है वो भी आप कैसे उसकी डिस्टेंस मेजर करते हैं, फ्रॉम द पोल टू द इमेज, इस तरीके से आपको मूव करना होता है। और आप डिस्टेंस कभी भी मेजर करेंगे तो आप पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हुए मूव करेंगे और डिस्टेंस मेजर करेंगे, या फिर अगर इमेज डिस्टेंस मेजर करनी है तो पोल से इमेज की तरफ मूव करते हुए आप डिस्टेंस को मेजर करेंगे। हमेशा पोल से मूव करना होता है, और पोल से मूव करने के बाद आप इमेज तक जब पहुंचेंगे तो आप डायरेक्शन चेक कर लेंगे कि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आपको मूव करना पड़ रहा है या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आपको मूव करना पड़ रहा है। उसके बाद आप देखिए कि जिस डायरेक्शन में मूव आप करते हुए डिस्टेंस मेजर कर रहे थे उसकी डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से। अगर ऑपोजिट है तो आप डिस्टेंस को नेगेटिव वैल्यू दे करके फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये बात इमेज डिस्टेंस के लिए भी लागू होती है। आपको हमेशा क्या चेक करना होता है, आपको हमेशा इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन चेक करनी होती है और डायरेक्शन चेक करनी होती है जब आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। अगर डिस्टेंस मेजर करते वक्त जो डायरेक्शन आप चेक कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन के, तो ऐसे में आप जो डिस्टेंस लिखेंगे उसको नेगेटिव वैल्यू दे देंगे। इमेज डिस्टेंस में भी यही बात लागू होती है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला दिया गया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन बेसिकली आपको यही बता रहा है कि आपकी इमेज जो है उसकी साइज क्या बड़ी है या छोटी है। कंपैरिजन है बेसिकली, मैग्निफिकेशन एक कंपैरिजन है बिटवीन द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन जो है वो ज्यादा है, वन से ग्रेटर है या फिर वन भी है, वन है तब तो इक्वल है। अगर वन आ जाएगी मैग्निफिकेशन की वैल्यू उसका मतलब कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो सेम है, या फिर हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है। लेकिन अगर ज्यादा वैल्यू आ जाती है, वन से ज्यादा आ जाती है, इसका मतलब यह है कि इमेज जो बनी है वो ऑब्जेक्ट की तुलना में बड़ी बनी है, एनलार्ज बनी है। या फिर अगर वैल्यू कम आ जाती है, वन से लोअर आ जाती है, जैसे कि 0.5 आ जाती है या फिर 0.7 आ जाती है, इसका मतलब ये है कि इमेज की साइज छोटी है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली आप कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। तो इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर पता चल गया कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। फॉर्मूला यही है माइनस वी बाई यू। अब माइनस वी बाई यू में भी वी और यू की जगह आप लोगों को जब वैल्यूज डालनी होती है मैग्निफिकेशन का पता लगाने के लिए तो उसके भी साइंस आपको डालने पड़ते हैं। माइनस वी बाई यू तो फॉर्मूला ही है। उसके बाद आपको जैसे आप अलग जगहों पर कहीं पर भी आपको जब भी वैल्यू डालनी होती है वी और यू की, वी क्या है इमेज डिस्टेंस है, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो आपको जब भी वैल्यूज डालनी होती है तो आपको साइन के साथ में डालनी होती है। तो पहले साइन का पता लगा लो, उसके बाद आपको कहीं पर भी वैल्यू डालनी हो तो विथ साइन प्रॉपर साइंस के साथ ही आपको वैल्यूज डालनी होती है फॉर्मूलों के अंदर। उसके बाद मान लो कि आपने वैल्यू डाल दी जो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का माइनस वी बाई यू और विथ प्रॉपर साइंस आपने डाल दी, और उसके बाद आपकी मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव वैल्यू आई है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इमेज बनी है वो रियल बनी है। रियल इमेज आपको पता है, रियल इमेज वो इमेजेस होती है जिन्हें स्क्रीन पर ला सकते हैं। तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है कि आपकी इमेज जो है वो रियल इमेज है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इमेज बनी है वो वर्चुअल बनी है। तो इस तरीके से मैग्निफिकेशन एक तो आपको साइज का कंपैरिजन देता है बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, दूसरा ये भी बताता है कि नेचर क्या है, इमेज का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, वो वर्चुअल है या फिर वो रियल है, ये भी बताता है आपका मैग्निफिकेशन का वैल्यू। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पर आपने जो अभी तक फॉर्मूले पढ़े हैं उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको कुछ दिए गए हैं, एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, आपको पूरा सोल्यूशन दिया गया है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, यहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस को बिना देखे भी करना है और इसके जैसे क्वेश्चंस भी आप अगर मिल जाए आपको कहीं पर तो आपको करना है। तो यहाँ पर देखो आप लोग आ जाओ पेज नंबर 170 पर और एग्जाम्पल नंबर 10.1, इसमें आपको जो एग्जाम्पल यानी कि क्वेश्चन दिया है इसमें पूछा गया है कि अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 meters। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 meters फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो यहाँ पर अभी सोल्यूशन मत देखो, आप यहाँ पर मेरी बात सुनो और पेंसिल लेकर के पेपर लेकर के बैठ जाओ और इसमें सोल्यूशन अभी नहीं देखना, आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको कैसे करना है। सबसे पहली बात आपको बताई गई है कि आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर आपको पता चल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कॉन्वेक्स मिरर पता चलने से बहुत सारी चीजें पता चल गई, जैसे कि इसमें आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है विच इज इक्वल्स टू 3 meters। 3 meters आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, इसका मतलब आपका फोकल लेंथ कितना होगा, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, यानी कि 3/2 आपका फोकल लेंथ का वैल्यू होगा। और क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए फोकल लेंथ की वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे, यानी कि +3/2 आप फोकल लेंथ की वैल्यू लेंगे। उसके बाद दूसरी बात आपको ये बताई गई है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो रियर व्यू मिरर के तौर पे यूज किया जा रहा है, यानी कि व्हीकल में लगाया हुआ है। मान लो रियर व्यू मिरर के तौर पे ना भी यूज किया जाता, कहीं पर ऐसे ही रखा होता, तो यहाँ पर सिंपली ये बोला है कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि मिरर से 5 मीटर की दूरी पर है। मिरर जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है। मिरर से 5 मीटर की दूरी पर एक बस लोकेटेड है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्वेक्स मिरर से 5 मीटर की दूरी पर लोकेटेड है। तो आप क्या करो, आप अज्यूम कर लो कि एक कॉन्वेक्स मिरर है और उसके इन फ्रंट पे, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 मीटर पे दूरी पर लोकेटेड है, मिरर से 5 मीटर की दूरी पर लोकेटेड है। अब देखो, ऐसे समझ लो कि कॉन्वेक्स मिरर है और उसके लेफ्ट हैंड साइड पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 मीटर की दूरी पर लोकेटेड है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से लेफ्ट हैंड साइड पर रखी हुई है। अब इस ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रेज पड़ेंगी उनकी डायरेक्शन किधर होगी, उनकी डायरेक्शन होगी प्लस एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि ऑब्जेक्ट से मिरर की ओर डायरेक्शन आपकी इंसिडेंट रेज की होगी। साथ के साथ बनाते भी जाओ, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ वैसे आप ड्रॉ करो। आप एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करो और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करो, और ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज जो पड़ेंगी वो कॉन्वेक्स मिरर पर पड़ेंगी, तो आपकी रेज की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी, ऑब्जेक्ट से मिरर की ओर। इस तरीके से आप इंसिडेंट रेज बनाओ तो आप देखोगे कि इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है। आप बेसिकली साइन पता करना चाहते हैं कि साइन क्या डालेंगे, आप प्लस डालेंगे कि नेगेटिव डालेंगे। तो यही पता करने के लिए यहाँ पर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने देख लिया कि जो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में है। अब आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए कैसे मूव करना होता है, फ्रॉम पोल टू द ऑब्जेक्ट, इस तरीके से मूव करना होता है। तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करोगे तो मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, आपकी मूवमेंट पोल से ऑब्जेक्ट की ओर हो रही है और ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्वेक्स मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर रखा हुआ है, यानी कि आप नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आपकी मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको मेजर करते वक्त हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, दोनों आपस में ऑपोजिट है, तो इसीलिए आप ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको नेगेटिव वैल्यू देंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव वैल्यू देनी है, यानी कि जो स्मॉल u आप लोग लिखते हैं अपने फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। तो इसमें स्मॉल u जो है उसकी वैल्यू आपको बोली गई है 5 मीटर, और यहाँ पर साइन इसको जो आप दे रहे हैं, आपने चेक किया है कि इसका साइन जो होगा वो होगा नेगेटिव, यानी कि u की वैल्यू हो जाएगी -5 मीटर। तो आपको वैल्यूज पता लग गई। अब आप अपने फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करो। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ पर 1/v तो ऐसे ही रहने दो, v को कोई साइन नहीं देना, v तो हमें पता लगाना है, इमेज डिस्टेंस हमें पता लगानी है। 1/u की जगह, वहां पर u की जगह आपको लिखना है -5, तो आप कैसे लिखेंगे, 1/v + 1/-5 = 1/f की जगह आप लिखेंगे 1/3/2। तो इस तरीके से आपको लिखना है, उसके बाद आपको सॉल्व करके v निकालना है यहाँ पर। तो बाकी तो वैल्यूज डालने के बाद में मैथमेटिक्स ही है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो बेसिकली आपको सॉल्व कैसे करना है, आपने यहाँ पर लिखा है 1/v, माइनस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 1/v + 1/-5 = 1/3/2। तो इसको फर्दर आप जब सॉल्व करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 1/v - 1/5 = 2/3। ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया गया है, आप बस लिख लो, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे कि क्या किया गया है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, यहाँ पर आपने लिखा 1/v - 1/f = 2/3। उसके बाद क्या करो कि आप आगे सॉल्व करो, इसमें आप लिखो 1/v = 2/3 + 1/5। फिर से सुन लो, 1/v = 2/3 + 1/5, ये लिखोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे v = 15/13। ये आप लोग चेक कर लेना, आपकी भी यही वैल्यू आएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके आपका जो v का वैल्यू आएगा वो आएगा 15/13। तो v की जो वैल्यू आ रही है ये पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो इमेज बन रही है वो किस साइड में बन रही है, वो कॉन्वेक्स मिरर के राइट हैंड साइड में बन रही है, ऑपोजिट साइड में बन रही है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसकी दूसरी साइड में इमेज बन रही है। तो पॉजिटिव वैल्यू आपकी आ रही है 15/13 का आप जो वैल्यू निकालेंगे डिवीजन करके तो वो अप्रोक्सीमेटली 1.15 मीटर आएगा। उसके बाद आपको आगे अगर नेचर ऑफ द इमेज पता करनी है तो आपको मैग्निफिकेशन पता करनी होगी। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -V/U। तो इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दो, V की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है +1.15 और U की वैल्यू है -5। और सॉल्व करने के बाद मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +0.23। 0.23 से आपको क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है आई है मैग्निफिकेशन की वो 1 से लेस है। इसका मतलब है कि आपकी जो इमेज बनी है वो डिमिनिश्ड बनी है, ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज की साइज जो है वो छोटी है। और क्योंकि आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो आपकी इमेज है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है, स्मॉलर साइज की है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सारा कुछ आप लोगों को समझ में आ गया इस एग्जाम्पल से। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन 10.2, एग्जाम्पल 10.2, ये भी पेज नंबर 170 पर ही है, ये आपका होमवर्क है, इसे आप खुद करेंगे क्योंकि आपको एक क्वेश्चन समझा दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करना है, तो आप ये क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल 10.2, इट इज ऑन पेज नंबर 170। बिना देखे करना है, इसका सोल्यूशन नहीं देखना है आपको, बिना सोल्यूशन देखे आपको खुद से करने की कोशिश करनी है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके पेज नंबर 171 पर भी है, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है, फोकल लेंथ आपसे पूछा गया है, तो 32/2 कर देंगे तो आपको फोकल लेंथ पता चल जाएगा क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर की लेंथ 32 सेंटीमीटर दी गई है। तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ की वैल्यू हो जाएगी +16 सेंटीमीटर। प्लस में क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पेज नंबर 171 पर ही है ये भी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सामने रखा है और ये जहां पर रखा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, कॉनकेव मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसकी जो इमेज बन रही है वो 3 गुना बड़ी है, साथ में इमेज जो है वो रियल इमेज है। आपको बताना है कि इमेज डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि आपको मैग्निफिकेशन दी गई है, मैग्निफिकेशन दी गई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी गई है, इमेज डिस्टेंस पूछी गई है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा -V/U। -V/U के फॉर्मूले में आपको वी और यू जो डालना होता है वो आपको साइन के साथ में डालना होता है। तो वी तो आपको कैलकुलेट करना है, यू की जगह आपको क्या करना होगा, आपको वैल्यू डालनी होगी और वो भी साइन के साथ में डालनी होगी, प्रॉपर साइन के साथ में डालनी होगी। उसके भी पहले आप एक बात ध्यान रखेंगे कि आपको मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू दी गई है वो क्या बता रही है आपको, 3 times है, यानी कि मैग्निफिकेशन जो है वो 3 है। अब 3 जो है वो प्लस का 3 है कि माइनस का 3 है, इसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है। रियल इमेज बोला गया है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू -3 है, तो आप यहाँ पर -3 लिखेंगे। -3 इज इक्वल्स टू -V/U, इस तरीके से आप लिखेंगे। अगर आपको बोला होता कि वर्चुअल इमेज है तो आप वहां पर प्लस लेते, मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस लेते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रियल इमेज बोला गया इसीलिए आप मैग्निफिकेशन की नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो -3 इज इक्वल्स टू -V/U आपने लिख दिया है। अब यू की जगह आपको वैल्यू डालनी है, साथ में आपको साइन भी डालना है प्रॉपर। तो यहाँ पर साइन चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना होगा, आपको चेक करना होगा कि कॉनकेव मिरर के किस साइड में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा है, इसका मीनिंग है कि मान लो कॉनकेव मिरर रखा है तो ऑब्जेक्ट उसके सामने रखने का मतलब है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है। तो अगर ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रखा होगा तो आप सारी जो बातें आपको बताई गई हैं उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ऑब्जेक्ट की जो पोजिशन है वो ऐसी आ रही है कि उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको नेगेटिव लेना होता है। तो इस केस में आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेना होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया गया है, नेगेटिव वैल्यू डालने पर आप लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर है। तो आपका फॉर्मूला जो होगा वो कैसे हो जाएगा, -3 इज इक्वल्स टू -V अपॉन -10 सेंटीमीटर। सारा कुछ सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा V is equals to minus 30 centimeter. इसका मतलब है कि आपकी जो इमेज बनी है कॉनकेव मिरर से वो उसी साइड पर बनी है जिस साइड पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है. सेम साइड पर इमेज भी है, ऑब्जेक्ट भी है, इसलिए आपकी नेगेटिव वैल्यू आई है इमेज डिस्टेंस की. तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. आपको जो एग्जांपल मैंने बोला है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पेज नंबर 170 पर है, इसे भी आप सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे. यहाँ पर आपको सोल्यूशन नहीं देखना है, अभी सोल्यूशन आप कल देखेंगे जब आप सॉल्व कर चुके होंगे. अगर आपका आंसर सही आया होगा तो आप मैच कराएंगे, अगर गलत आंसर आया तो फिर से बिना देखे आपको सॉल्व करना है. तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी. बाकी जो ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं उसे भी दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग. बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बेस्ड भी बहुत सी चीजें पूछी जाती हैं. तो आप लोगों को क्या करना है, आपको रेडी होकर के आना है. थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आ सकते हैं, बाकी आज जो आपने पढ़ा है उसे आप रिवाइज कर लें. आपको कोई दिक्कत हो तो आप अपने टीचर से जरूर पूछें. हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद.
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद.